खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज हमें मुबारक सुबह बख्शी इस बाबरकत दिन में कि हम अपने दिन का आगाज उसके कलाम, उसकी परस्तश और उसकी इबादत से करें। क्योंकि खुदावंद खुदा अपने कलाम में यूं फरमाता है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तश रूह और सच्चाई से करते हैं। और खुदावंद खुदा की यही ख्वाहिश है हर एक ईमानदार से कि इस जमीन पर, जो जमीन, जो दुनिया हर तरह की ख्वाहिशों, हर तरह की तवज्जो को हटा देने वाली बातों और कश्मकश से भरी हुई है, उसमें ईमानदार खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत से मोहब्बत रखें, तो ये खुदावंद के हुजूर बहुत ही पसंदीदा बात है। तो आए हम चंद लम्हों के लिए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकें और अपने दिलों, दिमागों, रूहों को खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें, ताकि आज जो बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए वो जमीन की मानद ठहरे, जिसमें जमीन बीज बोया गया और वो बीज 100 गुना फल लाया और बहुत सी बरकत हासिल हुई। चंद लम्हों की खामोशी में खुदावंद के थ्रू हम सब दुआ करेंगे। कादरे मुतले खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, खुदावंद यसू अल मसीह के लिए, जो हमारे हर तरह के बोझ को, फिक्र को, परेशानियों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेता है और हमें इत्मीनान, तसल्ली, हौसला और कुव्वत बख्शता है। खुदा बाप, पाक रूह के जोर में आज हम जो कुछ भी सीखे हम सब के लिए 100 गुना फल लाए, हम सब के लिए बरकत का बायस बने, और वो 100 गुना फल हम सब के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी दूसरी जिंदगियों के लिए भी गवाही का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सबको याद है कि हमने अहदनामा में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका आयत बा आयत मतालिया कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की सुबह में हम एक लफ्ज पर गौर करें जो नए अहदनामा में से इफ्सियों 4 बाप उसकी 22वीं आयत में से हम सीखेंगे। हमने पिछले इतवार देखा था पुरानी और नई इंसानियत के बारे में, लेकिन चाहता हूं कि इसे और गहरे तौर पर हम जानें, पहचानें और इसमें से सीखें, इसलिए 22वीं आयत पर हम गौर करेंगे, उसके पहले हिस्से पर। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल नए सिरे से पैदा हुए ईमानदारों को हुक्म, उनकी तरबियत और उनकी नसीहत के लिए, और खासकर इस जमीन पर उस ताकत, उस कुदरत के लिए जो उन्हें मुहैया है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको और मुझे मुहैया है, उसमें जिंदगी बसर करने की वो तरबियत और नसीहत करता है। इसलिए हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे, लेकिन 22वीं आयत के पहले हिस्से में से इन अल्फाजों पर गौर करेंगे। पालूस रसूल फरमाता है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। अब सब खुदा यीशु मसीह की तालीम से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदावंद का इकलौता बेटा हूं, इसलिए दुनिया में आया ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह ही नहीं कहा और बहुत से बयानात में कि मोहब्बत करो, माफ करो, एक दूसरे की भलाई चाहो, एक दूसरे से इस तरह पेश आओ जैसे कि तुम अपने खुदावंद अपने खुदा की मोहब्बत का इजहार खुदा से करते हुए एक दूसरे से खुदा की मोहब्बत का इजहार करो। और 21वीं आयत में कहता है खुदा का बंदा, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह सच है, उसी की सुनी। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और उसी ने ये तलीम पाई होगी। खुदा यीशु मसीह की यही तलीम है, पालूस रसूल की यही तलीम है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेबों की शहवत शहवतों के सबब से खराब होती जाती हैं। इसलिए आज हम 22वीं आयत के इस हिस्सा पर गौर करेंगे कि पालूस ईमानदारों को कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। आज हम गौर व फिक्र करेंगे अगले चाल चलन पर। जब हम बाइबल मुकद्दस में लफ्ज अगले चाल चलन पर गौर करते हैं तो इसका मतलब है यानी हमारा तर्ज़े तरीका, जिसे कह सकते हैं कि जिंदगी का तरीका कार या जिंदगी का चाल चलन या ऐसा रवैया या ऐसे तौर से जिंदगी गुजारना। पालूस रसूल जब यहाँ पर कहता है कि अपने अगले चाल चलन को छोड़ दो, तो उसके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह तुम पहले मसीह के बगैर जिंदगी गुजारते थे, अब उस तरह जिंदगी ना गुजारना। जिस तरह पहले तुम्हारा तरीका कार और सोचना और चाल चलन था, वैसे अब तुम्हारा चाल चलन ना हो और ऐसे तुम जिंदगी ना गुजारना। इसलिए आज हम 5 मुख्तलिफ मिसालों को देखेंगे, 5 मुख्तलिफ मिसालों को देखेंगे और पालूस रसूल की जिंदगी में से सबसे उम्दा सबक हर एक ईमानदार के लिए ये है कि पालूस रसूल अपनी जिंदगी में अपने आप को फकीर और फरीसियों की तरह ये नहीं कहता कि मैं आला हूं, मुझ में ये क्वालिटी या ये उम्दा बातें पाई जाती हैं, और वो अपने आप को क्या कहता है कि ऊंचे पर नहीं चढ़ाता, वो अपने आप को खाकसार बनाता है और अपनी जिंदगी की मिसालें देकर कलीसिया को सिखाता है। इसलिए हम पालूस की जिंदगी में से देखेंगे जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, लेकर आए हैं या लिखना चाहते हैं, मेरे साथ हवाला देखें। पहला हवाला हम देखेंगे पालूस रसूल का तर्ज अमल या जिंदगी का तरीका कार या चाल चलन मसीह खुदावंद के बगैर कैसा था। जब पालूस ने यसु मसीह को कबूल नहीं किया था, जब पालूस रसूल यसु मसीह के लोगों को दुख पहुंचाता था, मेरे साथ देखें गलतियों, गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, हम उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे और 13वीं आयत पर इस बात पर गौर करेंगे। यहां पर पालूस कहता है ईमानदारों से, ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनी वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मकाशफा हुआ। इसका ये मतलब है कि पालूस रसूल ये कह रहा है कि तमाम शागिर्दों ने खुशखबरी को यीशु मसीह से सुना, उनको सिखाया गया, जैसे आपको और मुझे, मुझे यीशु मसीह की खुशखबरी सीखने का मौका मिला आज से तकरीबन 14-15 साल पहले, जब पता चला कि यीशु मसीह निजात है, तो उस खुशखबरी के बारे में पता चला और उस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने की ये बरकत और ये खिदमत मिली। तो पालूस कहता है कि मुझे जो खुशखबरी मिली है वो इंसानों की तरफ से नहीं, बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये पैगाम मुझे मिला है। और 13वीं आयत में कहता है, चुनाचे यहूदी तरीका में जो पहले मेरा चाल चलन था, यानी कि मेरे चाल चलन से मुराद मेरा तरीका कार था जिंदगी बसर करने का, चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि पालूस का तरीका क्या, तरीका कार क्या था, चाल चलन क्या था, कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था। पालूस की जिंदगी का अगर हम जायजा लेना चाहते हैं, आप सब वाकिफ हैं ईमाल की किताब 8वें 9वें और बाकी तमाम पापों को जब हम देखते हैं, तो पता चलता है कि उसका तरीका क्या क्या था। वो खुदा के लोगों को सताता, तबाह करता, उन्हें दुख पहुंचाता था। ये पालूस का पुराना तरीका कार था जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, जब वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मनजी और नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, जब तक उसने यीशु मसीह को मसीहा यानी कि मसीह मौद नहीं मान लिया। क्योंकि आज भी यहूदी बहुत से यहूदी यीशु मसीह को मसीह मौत या खुदा का भेजा हुआ मसीह कबूल नहीं करते। तो पालूस ने जब यीशु को कबूल नहीं किया था तो उसका मकसद, उसका तरीका का क्या था? पुरानी इंसानियत के जोर में मसीहियों को जो नए सिरे से पैदा हुए दुख पहुंचाना। तो ये पहली मिसाल है पालूस रसूल अपनी जिंदगी से हमें देता है। दूसरी मिसाल, पासबानों की जिंदगी और उनका चाल चलन तमाम ईमानदारों और गैर ईमानदारों के लिए। मेरे साथ एक और हवाला देखें कि हम जो पासबान हैं, हम सब के ऊपर खुदा का कलाम ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि हमारी जिंदगी का चाल चलन और नमूना कैसा होना चाहिए। इसलिए दूसरी मिसाल हम देखेंगे, पहला तिमोथियस 4 बाब उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत तक। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल तिमोथियस को जो एक खादम था, कलाम सुनाने वाला था, जिसे कह सकते हैं कि पासबान पादरी था अपने उस मौजूदा दौर में, उसे खुदा का बंदा पालूस रसूल लिखते हुए कहता है 11वीं आयत को जब पढ़ते हैं, पहला तमोथियस 4 बाब उसकी 11वीं आयत, ये तमाम पासबानों के लिए है, मेरे लिए दुनिया में तमाम बसने वाले पासबानों के लिए, कि हमें किस तरह जिंदगी बसर करनी चाहिए। इसीलिए तमोथियस के खत को क्या कहते हैं कि पादरियों का खतूत, पादरियों के लिए लिखा गया खत। 11वीं आयत में लिखा है, इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। 12वीं आयत में पालूस रसूल तमोथियस को कहता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, यानी कि तुझ पर नीची निगाह से ना देखे, तुझे नीचा ना करे, तुझे इस तौर से ना देखे कि तू हकीर है। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने में, पासबान का कलाम करना, पासबान का बोलना चालना गुफ्तगू ईमानदारों के लिए, और चाल चलन यानी के तरीका हयात यानी के जिंदगी का बसर गुजर करना कैसा होना चाहिए, कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बने। पासबानों के लिए ये खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि उनकी जिंदगी ईमानदारों के लिए, गैर ईमानदारों के लिए क्या है? एक नमूना है। और नमूने में कौन सी बातें हैं? हमारा कलाम करने का तरीका का, यानी कि रोजमर्रा की गुफ्तगू या बाइबल मुकद्दस को बयान करना, चाल चलन यानी कि हम किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, और मोहब्बत यानी कि ऐसी मोहब्बत मसीह जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, ईमान यानी कि ऐसा उम्दा ईमान जो कि दूसरे लोगों को क्या बख्शता है? ताजगी बख्शता है। हमारा ईमान, पासबान का ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि खुदा आपकी दुआ का जवाब दे, हो सकता है खुदा ऐसा करे, नहीं। पुख्ता ईमान और पाकीज़गी में नमूना यानी कि पाकीज़ा जिंदगी, ऐसी जिंदगी जो खुदा को पसंदीदा हो, उसमें क्या बनने की जरूरत है? नमूना बनने की जरूरत है। यह है दूसरी मिसाल जिसके बारे में हम सीख रहे हैं कि अपने अगले चाल चलन के मुताबिक नहीं बल्कि नई इंसानियत में। तो तीसरी मिसाल, ये तीसरी मिसाल तमाम ईमानदारों के लिए है, तमाम ईमानदारों के लिए जो कलीसिया, जिसे खुदा का बदन, जिसे गिरजा भी, उर्दू में हम गिरजा घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में कलीसिया के लिए लफ्ज चर्च जिसे कहा जाता है, ये तमाम कलीसिया के लिए खुदावंद खुदा के लोगों के लिए है, जिसमें माँ बाप बेटा बेटी सब मौजूद हैं। तो ईमानदारों का चार चरण कैसा होना चाहिए? गैर कौमों के सामने, ईमानदारों के साथ, और फिर खुदा के फरिश्तों के सामने। मेरे साथ देखें तीसरा हवाला, पहला पत्रस उसका पहला बाब। ये हवाला हमें ईमानदारों के चाल चलन के बारे में सिखाता है कि ईमानदारों के चाल चलन या जिंदगी का तरीका कार कैसा होना चाहिए। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 13वीं आयत से खुदा का बंदा पत्रस कलीसिया को लिखते हुए कहता है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर, उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के जहूर के वक्त तुम पर होने वाला है। यानी कि अकलमंद बनो, अपनी कमर को बांधो और होशियार होकर खुदा के फजल को थामे रखो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और उसके जहूर के दिन तुम्हें क्या होगा। 14वीं आयत, और फरमाबरदारी और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना रहो। वही बात, अपने पुराने चाल चलन के ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो। और 15वीं आयत में पालू खुदा का बंदा पत्रस कहता है कलीसिया को, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। ईमानदारों को अपने सारे चाल चलन में पाक बनने की जरूरत है। उठने, बैठने, बोलने, एक दूसरे से मिलने जुलने से अपने आप में क्या करने की जरूरत है, खुदा की पाकीजगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। खुदा ने हमें पाक ठहराया है, खुदा ने हमें रासबाज ठहराया है, खुदा ने हमें बेऐब ठहराया है, खुदा ने हमें दुनिया से अलहदा किया है, खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। उस मैार के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। एक और हवाला ईमानदारों के लिए, पहला पत्रस 2 बाप उसकी 11 और 12 आयत, यहां पर भी खुदा का बंदा कहता है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। पकीजगी किस तरह पैदा होगी? परहेजगारी से। परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। हमारी पुरानी फितरत, हमारा पुराना चाल चलन और तौर तरीका नहीं चाहता कि हम खुदावन खुदा के तौर तरीके को अपनाएं। इसलिए पालूस पत्रस इसी बात पर गौर करता है कि हमारी इस जमीन पर जो जिंदगी का मकसद है वो यह है, हम मुसाफर हैं, इसलिए हमें जिस्मानी ख्वाहिशों से लड़ने की जरूरत है। और क्या कहता है 12वीं आयत में, और गैर कौमों में, किनमें? गैर कौमों में, यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, वो लोग जो यीशु मसीह को अपना खुदावन नहीं मानते, गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। यानी कि ऐसी मसीही जिंदगी जिसमें लोग मिसाल दें कि मसीही ऐसे हैं, बुरे नहीं, क्योंकि आगे लिखा है, अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक काम को देखकर जब खुदावंद आए तो क्या करें? खुदावंद की तमजीद करें। ये तमाम ईमानदारों के लिए है। एक और हवाला है ईमानदारों के लिए, पहला पत्रस 3 बाप उसकी 16 आयत, यहां पर भी ईमानदारों को ही मुखातब किया गया है। और नियत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है, उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हो जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। हमारा चाल चलन ईमानदारों के सामने, ईमानदारों का चलन लाल चलन तरीकाकार पाक मिलनसार खुदाई होना चाहिए, मसीही तरीकाकार होना चाहिए, ना कि दुनियावी, ना कि दुनिया के लोगों से सीखा हुआ। इसलिए एक और हवाला, ये खासकर हुक्म मर्दों के लिए है, खासकर उनके लिए जो नाफरमान और जिद्दी और संग दिल हैं। उनके लिए खुदा का कलाम कहता है बीवियों को हुक्म देते हुए, अगर यहाँ पर कोई बहन शादीशुदा बैठी है तो उसके लिए ये तमाम शादीशुदा बहनों के लिए है। पहला पत्रस 3 बाप उसकी 1 आयत से, यहां पर खुदा का बंदा पत्रस कहता है उन तमाम बीवियों को जो मसीही हैं, जो खुदावन पर तवक्कल रखती हैं, कहता है, ऐ बीवियों, तुम भी अपने शोहरों के ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारा पकीजा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवियों के चाल चलन से खुदा की तरफ खींचे जाएं। बीवियों पर बहुत ज्यादा जिद जिम्मेदारी लगाई गई, बहुत दफा बीवियां बहुत दफा खावन को मसीह के पास लाने का वसीला बनती हैं, बहुत दफा बीवियों के वसीला से खावन खुदा को कबूल करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सी ऐसे गवाहियां सुनने का मौका मिलता है कि मेरी बीवी के वसीला से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, मेरी बीवी के वसीला से मैं जो संग दिल था, नाफरमान था, जिद्दी था, खुदा से, खुदा के लोगों से नफरत रखता था, मेरी बीवी की दुआओं और उसकी पकीज़ा जिंदगी के चाल चलन के वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। इसलिए जो बहनें शादीशुदा हैं, आपकी दुआ, आपके अखड़ और जिद्दी और क्या कह सकते हैं कि बहुत दफा नफरत से भरे हुए खामदों को बदल सकती हैं। इसलिए मसीही औरतों का चाल चलन, पकीसा चाल चलन खामदों के लिए निजात, बरकत, रूहानी तरक्की का बायस बन सकता है। इसलिए आखिरी बात पर खत्म करूंगा कि ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हो सकता है, खुदा के पाक रूह के जोर से, उसी रूह के वसीला से जिसने पालूस रसूल को जोर बख्शा, उसी रूह के वसीला से जिस रूह ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, उसी रूह के वसीला से जिस रूह के वसीला से आदम के नतनों में खुदा ने जिंदगी का दम बख्शा, उसी रूह के वसीला से जो आपके और मेरे अंदर है, खुदा हमको ऐसी जिंदगी बसर करने की कुव्वत और ताकत दे सकता है। सवाल ये है कि क्या हम उस कुव्वत को जो पाक रूह है हमारे अंदर है उसे काम करने देते हैं या नहीं। इसलिए हम आपको इस बात पर इस पैगाम को खत्म करना चाहता हूं कि खुदा के पाक रूह के वसीला से हम मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसके लिए ये मिसाल बहुत खूबसूरत है, इस पर खत्म करना चाहता हूं। लूत की मिसाल, जो सालम और सदूम और मूरा का रहने वाला था, और उसकी मिसाल दूसरा पत्रस 2:7-9 में लिखी गई है कि पालूस के लूत जो रासबाज था, बेदीन, नापाक चाल चलन में के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले लोगों के साथ रहता था, लेकिन वो अपने दिल को हर रोज शिकंजे में रखता था, हर रोज वो खुदावन को अपना दिल देता था। अगर लूत हर तरह की नापाकी और गुनाह पर गालब आ सकता है खुदा के ऊपर भरोसा करने से, हम भी उसी जोर के बायस जो हमारे अंदर है गालब आ सकते हैं। आए हम खुदा के हुजूर झुकें, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को इस बेशरा लोग और बेदीन जमाने से आजादी बख्शेगा। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे कि हम अपने पुराने चाल चलन के मुताबिक नहीं, बल्कि उस जोर में जो रूह कुदस का जोर तूने हमें बख्शा है उसमें जिंदगी गुजारें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ।